श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 20। त्रैविद्यमां सोमपहपूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्ग कतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकां अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान्। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो भगवान की पूजा अन्य देवताओं के रूप में करते हैं, लेकिन वो पूजा ठीक से नहीं करते हैं, डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं। तात्पर्य, त्रय विद्या शब्द तीन वेदों साम यजु तथा ऋग वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। केवल नाम से त्रिवेदी सफिशियंट नहीं है। जो इन तीन वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते, इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। तो स्पष्ट है, कई बार हमने इसका उद्धरण किया है, वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यः वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। तो अगर भगवत की वेदों को पढ़ने के बाद व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा में नहीं लग रहा है, इसका अर्थ है कि वो त्रिवेदी होकर भी त्रिवेदी संपूर्ण रूप से नहीं है। और इसी चीज को प्रभुपाद समझा रहे हैं कि वास्तविक त्रिवेदी जो वेदों का ज्ञाता है वो भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने में रुचि दिखाएगा। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। इसका अर्थ है कि हरे कृष्ण मंत्र के जाप के साथ साथ हमको भगवद गीता और श्रीमद भागवतम जैसे प्रमाणिक स्रोतों से सुनना चाहिए। अब कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि अगर मैं वेदों को पढ़ रहा हूँ तो मुझे भगवद गीता और भागवतम को पढ़ने की क्या जरूरत है, वो तो वेदों का ही अंग हैं। देखना चाहिए, जैसे गन्ने को घोल करके हम जूस नहीं बना सकते बावजूद इसके कि चीनी जो है वो गन्ने से ही आती है, उसी तरह आम का एक फल है तो आम के फल को खाया जा सकता है। तो व्यक्ति कोई विवेचना करे, अच्छा तो आम का पेड़ की पत्तियां ये डालियों को लेकर के मैं खाऊंगा तो उससे संतुष्ट हो जाऊंगा, नहीं। वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम, सारे उपनिषदों का सार है भगवद गीता। तो जिस प्रकार से गन्ने का सार उसका जूस है जो कि मीठा होता है, लेकिन गन्ना खाएंगे या गन्ने को जूस बनाने का प्रयास करेंगे या जूस में डालकर सीधे पीने का प्रयास करेंगे तो संभव नहीं होगा। उसी प्रकार से वेद में ज्ञान कांड कर्म कांड इत्यादि का वर्णन है। तो व्यक्ति अगर वेदों का अध्ययन करे और उसके हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं तो काफी संभावना है कि वो इन प्रस्तावों से, स्वर्ग जाने के प्रस्तावों से प्रलोभित हो जाएगा और अधिक भ्रमित हो जाएगा और भगवान को समझने की बजाय भोग के प्रयासों को में संलग्न होने के कार्य करने लगेगा। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, तो अर्थात आप समझ गए कि वेदों का अध्ययन करें लेकिन जो अगर श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का अध्ययन नहीं करता है तो फिर वो व्यक्ति वेदों के सार जो कि वेदों का उद्देश्य है जो है कृष्ण को समझना, उसको वो समझ नहीं पाएगा। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं, अर्थात वेदों के उद्देश्य को ना समझ करके रूढ़िवादिता से केवल वेदों का अध्ययन करना। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं, अर्थात रजोगुण और तमोगुण से। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों यथा महर लोक जन लोक तप लोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार उन लोकों में पहुंचकर वहाँ इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। तो आप कहेंगे भाई ये तो बड़ा अच्छा प्रयोजन है, ये तो बड़ा अच्छी बात है। यही तो वेदों का धोखेबाजी है। धोखेबाजी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जीवात्मा शाश्वत है। वो इस प्रकार के क्षणिक स्वार्गिक सुख या उच्चतर लोकों के जीवन से भी संतुष्ट नहीं हो सकता। जैसे कि भगवान गीता में ही बताते हैं, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तन अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक से लेकर जितने भी नीचे तक लोक हैं सब में पुनर्जन्म का चक्र लगा रहता है, लेकिन भगवान के धाम प्राप्त करके व्यक्ति कभी इस जगत में वापस नहीं आएगा। तो इसी कारण से समझ में आना चाहिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो सही में वेदांती है, वो समझता है कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण का भजन करना, कृष्ण की सेवा करना, और वो इस प्रकार के प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होता है। लेकिन जो लोग इस प्रकार से नहीं समझ पाते हैं वो निश्चित रूप से इन सब प्रलोभनों से प्रभावित हो जाते हैं। अगला श्लोक देखेंगे, श्लोक नंबर 21। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं शीणे मर्ते शीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। तब भगवान यहाँ पे ये जो स्वर्ग जाने का इच्छा है, इस इच्छा को काट रहे हैं, इस इच्छा के जड़ से ही निकाल रहे हैं। इसके जो दोष है, इनहेरेंट दोष कह सकते हैं, जो इसमें वास्तविक दोष है, वस्तुगत दोष है, उसको बता रहे हैं। इस प्रकार जब वे उपासक यानी देवताओं के उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि स्वर्ग की सिचुएशन भले ही बहुत लंबी हो, मानवीय मानवीय गणना के अनुसार, हमारे जीवन के अनुसार भले ही स्वर्ग की जीवन एकदम शाश्वत सा लगे, लेकिन वो शाश्वत है नहीं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, खोज करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो इंद्रिय तृप्ति मतलब अंततो गत्वा दुख, और स्वर्ग में भी हमने सुना है स अतिशायता का दुख रहता है। हर देवता सोचता है दूसरे देवता को अधिक बेटर भोग मिले हैं, और इस कारण से वो अपने प्राप्त भोगों को भी सुख से भोग नहीं पाता है। और वैसे हमने भगवद गीता में सुना ही है, यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवते आद्यंत वंत कौंते या नतेषु रमते बुधा। ये जो संस्पर्श भोग हैं, इंद्रियों से प्राप्त होने वाले भोग हैं, ये केवल दुख का कारण बनते हैं, और हमारे हृदय में तर्श यानी इच्छाओं के उत्पत्ति करते हैं। नहीं तो आप देखते ही हैं कि क्यों इंद्र पृथ्वी की ही स्त्रियों का भोग करने के लिए उतर जाते हैं कभी कभी। तो हम ये देखते हैं कि भोग की इच्छाएं केवल दुख ही देती हैं। तो इस प्रकार से स्वर्ग में जाकर भी आत्मा को सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता है, और अंततो गत्वा जो भोग मिल भी रहा है वो समाप्त हो जाता है, और व्यक्ति को पतन हो जाता है, गिर जाता है वापस जगत में। उदाहरण के लिए जैसे कोई व्यक्ति बहुत पैसा कमाए, पैसा इकट्ठा करे और ताज होटल में जाए, तो कुछ दिन तक उसे सो कॉल्ड सुख प्राप्त होगा, लेकिन जैसे ही उसका समय समाप्त हो जाएगा, जिसके लिए उसने बिल दिया, जिसने पैसे भरे हैं, तो वापस उसको अपने सामान्य से घर में आना पड़ेगा। तात्पर्य, जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। और अगर मान लीजिए सदा रहने भी दिया जाए, तो वैसे तो रहने नहीं दिया जाएगा, तो भी स्वर्ग हमेशा नहीं रहने वाला। ब्रह्मा जी के एक ही दिन में, एक दिन के बाद स्वर्ग नष्ट हो जाता है। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, जन्मादस्य यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वस्तुतः प्राप्त क्या करेगा, उसको तो चरम लक्ष्य पता ही नहीं है कि चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है। जब लक्ष्य ही नहीं पता है तो इधर उधर भटकते रहेंगे, मारे मारे फिरते रहेंगे, ये कहा जाना चाहिए। तो कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक डुबाए, यही भौतिक प्रकृति कर रही है। कभी जीवात्मा को स्वर्ग लेके जाती है और कभी नरक में डुबाती है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता ब्रिज। पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई बहुत भाग्यवान जीव होता है, तो उसको गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त होता है। और भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सबको ये बीज प्राप्त है। माली हो या से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले कौरय सिंचन। अब हमारा ये कर्तव्य है कि माली होकर के अपना इस कर्तव्य को समझकर, दायित्व लेकर के श्रवण और कीर्तन, भगवान के, भगवान विष्णु के श्रवण और कीर्तन के जल के द्वारा इसका सिंचन करें, ताकि भक्ति लता खूब अच्छे से फलीभूत हो। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को आता जाता रहता है, मतलब जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। इस चीज को तो आप मेलों में देखते ही हैं कि व्यक्ति इस प्रकार के चक्र में बैठा रहता है, जो ऊपर जाता है नीचे जाता है, इसे हिंडोला बोलते हैं, लेकिन वस्तुतः उस चक्र से बाहर कभी नहीं आता है। बाहर तो तभी आएगा जब वो व्यक्ति जो इस चक्र के बाहर बैठा हो और उसके पास शक्ति हो बटन दबाने की, जिसके द्वारा ये झूला रुके और वो बाहर आए। उसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के द्वारा हम भगवत ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तभी हमारे इस हिंडोले के रुकने का संभावना होती है। एक इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि इस हिंडोले में हम ही नहीं बैठे हैं, अपना हमारा पूरा परिवार ही बैठा है। तो अगर हम एक भक्त के शरणागत होते हैं तो अगर हमारे लिए रोकेंगे तो ये जो झूला है वो हमारे सारे परिवार के लिए, जो सभी लोग उस चक्र में बैठे हैं, उन सबके लिए रुक जाएगा। अर्थात अगर परिवार से एक व्यक्ति भगवान के धाम चला जाता है या जाने की योग्य बनता है, तो भगवत कृपा से सभी लोग चले जाते हैं। इसीलिए भगवान की सबसे बड़ी कृपा अगर एक व्यक्ति के ऊपर होती है तो उसे भगवान का भक्त बनने का मौका मिलता है, और भगवान का भक्त बनने का प्रयास, ये हमारे सबसे बड़ी कृपा हमारे परिवार के ऊपर होगी, तो जो लोग भक्त नहीं भी हैं उन पे भी भगवान का अनुग्रह हो जाता है अगर हम भक्त करते हैं। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। तो प्रभुपाद यहाँ भी समझा रहे हैं कि अगर हमको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई तो वापस जगत में नहीं आना पड़ेगा। तो अगर प्रयास ही करना है, भाई स्वर्ग लोक जाने में भी तो प्रयास होता है, तो अगर प्रयास ही करना है तो क्यों ना भगवान के धाम जाने का प्रयास किया जाए। तो ये चीज बुद्धिमान व्यक्ति ही सोचते हैं, कोई विरले व्यक्ति ही सोचते हैं, और तब सोचते हैं जो भगवद्गीता, भागवतम जैसे सत्शास्त्रों को सुनते हैं भक्तों के मुख से। हरे कृष्णा।